संकल्प का उद्गम स्थान क्या है, संकल्प का स्वरूप क्या है, संकल्प की उत्पत्ति ही क्यों होती है, निःसंकल्प होना क्या स्वयं में एक संकल्प नहीं होगा, देहात्म भाव रहते क्या संकल्प रहित होना संभव है, संकल्प रहित होना क्या अस्वाभाविकता नहीं है, यदि स्वाभाविकता है तो फिर संकल्प उत्पन्न ही क्यों होते हैं, आदि आदि अनेक प्रश्न उठते हैं, समाधान प्रार्थनीय है। कई प्रश्नों का उत्तर एक ही हो जाएगा। संकल्प का उद्गम देह में मम और अहम बुद्धि से संकल्प उठता है। निज स्वरूप में स्थिति न होने के कारण देह बुद्धि से जब जगत दिखाई देता है तो शरीर और संसार के संयोग जनित सुख का संकल्प उत्पन्न होता है। संकल्प की उत्पत्ति वास्तविक जीवन के लिए स्वाभाविकता नहीं है, अस्वाभाविकता है, जो अपने आप में अपने अविनाशी अस्तित्व का अनुभव कर रहा है, जो अपने आप में संतुष्ट होकर रह रहा है, जो उस आनंदमय जीवन के अनुभव में आनंदित है, उसमें संकल्प नहीं उठते। संकल्प कहते हैं किसको, कि जो आपको शरीर और संसार के साथ जुटा दे उसको संकल्प कहते हैं। अप्राप्त वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की आवश्यकता में संकल्पों की उत्पत्ति होती है। तो जब हम शरीर में मम और अहम बुद्धि रखते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसी भूल जब तक जीवन में रखते हैं तब तक संकल्पों की उत्पत्ति होती है। तो संकल्पों की उत्पत्ति का होते रहना अस्वाभाविक बात है और सब प्रकार के संकल्पों की निवृत्ति जीवन की स्वाभाविकता है। संकल्प का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप यही है जो मुझको अपनी स्वाभाविक स्थिति से विचलित कर दे। संकल्प का स्वरूप क्या है, जो मेरी अपनी मौलिक शांति को भंग कर दे, जो बाह्य जगत की ओर मुझे प्रवृत्त कर दे, जिसकी पूर्ति में अपना मूल्य घट जाए, पराधीनता और दासता आ जाए, जो पूर्ति के आधार पर अनेकों संकल्पों की उत्पत्ति कर दे, जो अपनी अपूर्ति में व्यक्ति को क्षोभ और क्रोध से भर दे, कर्तव्य की विस्मृति करा दे, निज स्वरूप की विस्मृति करा दे और परमात्मा की विस्मृति करा दे, उसका नाम संकल्प है। उत्पत्ति क्यों हुई ये बात हो गई। निःसंकल्प होना क्या स्वयं में एक संकल्प नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि संकल्प के स्वरूप में आपने देखा कि संकल्प उसे कहते हैं जो कि मनुष्य की स्वाभाविक शांति से उसको विचलित करा दे। मनोविज्ञान में इसको कहा जाता है कि होमियोस्टेसिस को बिगाड़ देता है, मेंटल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है। जिस समय आपके जीवन में अप्राप्त वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की जरूरत नहीं महसूस होती है, उस समय समाधि के बिना भी व्यक्ति स्वाभाविक शांति में रहता है। और जैसे ही संकल्प उठा नहीं कि स्वाभाविक शांति भंग हो जाती है और स्व से भिन्न जगत की वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, परिस्थितियों के लिए वो चलायमान हो जाता है। तो संकल्प किसको कहते हैं, कि जो आपको शांति से भटका दे। संकल्प किसको कहते हैं, जो आपको बाह्य जगत में प्रवृत्त करा दे। संकल्प किसको कहते हैं, जो पूर्ति में सुख का भास पैदा करे और अपूर्ति में क्रोध और दुख क्षोभ पैदा करे। तो उस संकल्प की निवृत्ति जीवन की मांग होती है, शांति की मांग होती है, वो नया संकल्प नहीं होता है। देहात्म भाव रहते क्या संकल्प रहित होना संभव है? हाँ संभव है, इस प्रकार से कि जैसे हम लोग हैं और अभी शरीर का भास हमारा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग शांति की मांग अनुभव करते हैं, अविनाशी जीवन की मांग अनुभव करते हैं, परमात्मा के प्रेम की अभिलाषा लेकर के इस दुनिया में हम लोगों ने सत्संग पसंद किया है, तो देह का भास मिटा तो नहीं है, लेकिन देह के रहते रहते और शरीर के साथ मिलकर सत्य की चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं, तो शरीर की सहायता लेकर मैं बोल रही हूँ और हमारे भाई बहन आप सभी शरीर की सहायता लेकर सुन रहे हैं, तो शरीर के बिना तो बोलना सुनना संभव नहीं है, इसलिए शरीर के सहयोग से ये काम संपादित हो रहा है। फिर भी हमारे जीवन में चिर शांति की मांग है, जन्म मरण की बाध्यता मिट जाए परम स्वाधीनता की मांग है, और परम प्रेमास्पद के प्रेम से हम अभिन्न हो जाएं, ऐसी हमारी मांग है। तो इस मांग की जागृति में शरीर का भास रहते हुए भी निःसंकल्पता की साधना साधक जन करते हैं और निःसंकल्पता उनकी आती है। दक्षिण वाले स्वामी रामदास जी के जीवन में इस तरह की बात साधना के प्रारंभ में ही आई थी, जब उन्होंने निश्चय किया कि राम के होकर रहना है, तो घर से निकल के जाके कहीं बैठ गए, तो किसी ने कहा वहां चलोगे, अच्छा राम जी, अब उतर जाओ, अच्छा राम जी, अब ये भोजन ले लो, अच्छा राम जी। तो उनके क्वेस्ट फॉर ट्रुथ इंग्लिश में किताब है और कई वॉल्यूम्स हैं छोटे छोटे, बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश, बहुत रसदार भाषा, क्योंकि उसमें हृदय का रस भरा हुआ है। उसमें लिखा है कि कहीं वो जाते थे तो रेलवे लाइन के किनारे किनारे एक बुढ़िया कहीं बैठी रहती थी, तो वो देखती रहती थी, तो चलते चलते पांव में चोट लग गई है, वो दीवार फट गई है, कहीं कहीं मैल जम गया है, कहीं खून लग गया है, शरीर पे कैसे कैसा बिना स्नान के ऐसा हो रहा है, तो वो बुढ़िया माई जाके बच्चे की तरह बांह पकड़ के खींच के ले आती, बाबा इधर आ करके ले आती, और सड़क के किनारे म्युनिसिपैलिटी का जो वो होता है पानी का नल, उसके नीचे बैठा देती, बाबा नहा नहला देती हूँ मैं, नहा यहाँ बैठ, अच्छा राम जी, खूब मल मल करके नहला वहला करके उनके कपड़े उपड़े धो देती, फिर वो भूंजा और ऐसे भुने हुए अनाज की छोटी सी झोपड़ी खटिया लेके बैठती थी बेचने के लिए बुढ़िया, तो उसी के पास ले आकर के बैठा लेती, जो उसके पास होता खिला देती, और लिखा है उसमें कि राम खिलखिलाकर हंसता रहता, अच्छा मैया कर ले तू, जो तेरे मन की भी कर ले, करते करते राम हंसता रहता, बैठा रहता, नहा लेता, खा लेता, मैया कर देती, भेज देती, चला जाता, अच्छा राम जी, अच्छा राम जी। स्वामी जी महाराज कहते कि थर्ड क्लास में ट्रेन में बैठे थे तो एक कांस्टेबल आया, तो उसको सोने का मन हुआ, तो स्वामी रामदास जी बैठे थे तो उसने कहा कि ए बाबा तो इधर से उतर जा, नीचे बैठ, मैं सोऊंगा, अच्छा राम जी, तो नीचे बैठ गए। वो लेटने लगा तो उसके सिर पर जो पुलिस की लाल पगड़ी होती है कांस्टेबल की, तो उसने सोचा कि बाबा बेकार को बैठा है, इसी को पकड़ा के हम जरा से ठीक तरह से सो जाए, तो पगड़ी उतार के उसने कहा बाबा इसको रखे रहना, हम थोड़ा सोते हैं, अच्छा राम जी, रख लिया उसको, रखे रहे गोदी में लेके बैठे रहे, वो सोया रहा, सो करके जब उठा बाबा लाते, अच्छा राम जी, दे दिया, उनको चला गया। तो महाराज कहते कि उन्हीं स्वामी रामदास जी के लिए, स्वामी जी से कई बार भेंट मुलाकात हुई है और खूब प्यार है दोनों में आपस में, स्वामी रामदास जी का और अपने महाराज जी का, तो कहते कि वही स्वामी रामदास जी उनको पांच साधकों के साथ सारे संसार में भ्रमण करने के लिए हवाई जहाज का इंतजाम सरकार ने किया आगे चल करके, और उन्होंने सबको सुनाया समझाया बताया। तो प्रारंभिक दिनों की बात मैं कहती हूँ कि देह का भास रहते हुए भी संकल्प रहित होने का व्रत मनुष्य लेता है। और कल संध्या समय की बैठक में जैसे मैंने सुनाया कि स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को एक एक मंत्र बता दिया, प्रारंभ कहाँ से करोगे तो अपने सुख वाला हो तो उसको छोड़ते जाओ। तो छोड़ना तो अपने बस में है ना, पैदा तो हुआ, इसलिए कि हम लोगों को अभी शरीर का भास है तो पैदा तो हुआ, लेकिन उसको छोड़ना अपने बस की बात है तो छोड़ दो। और अगर सर्वहितकारी संकल्प हो तो उसको पूरा करने में ताकत लगा दो, हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक है। भगवत समर्पण भाव के साधक हो तो जिन जिन बातों की परिस्थिति जुटती जाए प्रभु के मंगलमय विधान को मान करके उसमें समय शक्ति लगा दो, और पूरा हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, बन जाए तो ठीक, बिगड़ जाए तो ठीक। तो ईसा मसीह माँ बेटे दोनों जैसे थे ना, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो ये अनुवाद मुझको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अंग्रेजी में उसका बहुत अच्छा भाव है कि जो प्रभु का संकल्प है सो पूरा हो। तो स्वामी जी महाराज ऐसे कहते हैं कि ईश्वर विश्वासी ऐसे ही करते हैं कि उनके भीतर अगर कोई संकल्प बना भी सर्वहितकारी भाव से तो उसको भगवत संकल्प में मिला के छोड़ देते हैं। अपने को तो मालूम नहीं है कि मेरे भीतर जो संकल्प आया है वो सचमुच हितकारी होगा, शुद्ध होगा कि नहीं होगा, कि पूरा होगा कि नहीं होगा, हम लोगों को क्या पता है। तो ईश्वर विश्वासी साधकों को सलाह दी महाराज जी ने कि अगर कोई ऐसा सर्वहितकारी संकल्प उठे तो प्रभु के संकल्प में मिला के उसको छोड़ देना, कि अगर ये भगवत संकल्प के अनुरूप है तो पूरा हो जाए। तो तुम्हारी सामर्थ्य अल्प हो सकती है, और जब भगवत संकल्प में उसको मिलाओगे तो प्रभु के संकल्प से बहुत से सामर्थ्यवान आकर के तुम्हारे साथ जुट जाएंगे और वो काम पूरा हो जाएगा। तो हो गया तो प्रभु की शक्ति से हो गया, और नहीं हुआ तो साधक क्या समझेगा, साधक यही समझेगा कि ये संकल्प पूरा होना जरूरी नहीं था इसलिए नहीं हुआ। तो दोनों ही दशाओं में उसे न अभिमान आएगा न क्षोभ आएगा। अगर पूरा हो गया तो ये तो मेरे मालिक के संकल्प के अनुरूप था, भगवान के संकल्प में मिला के ना मैंने उसको किया, तो भगवत संकल्प से ये पूरा हुआ, तो भगवत शक्ति से ये पूरा हुआ। तो साधक को अभिमान नहीं आएगा कि मैंने बड़ा भारी काम किया। और अगर नहीं पूरा हुआ तो उसको कोई क्षोभ नहीं होगा, वो मानेगा कि जरूर ये बात ठीक नहीं थी, इसका पूरा होना जरूरी नहीं था इसलिए पूरा नहीं हुआ होगा, और नहीं तो भगवत संकल्प में मिल करके ये जरूर पूरा हो जाता। तो ऐसे क्रमिक ढंग से साधना के रूप में आगे बढ़ते बढ़ते निःसंकल्पता की स्थिति आ जाती है। और निःसंकल्पता जो है वो अविनाशी जीवन में प्रवेश पाने का एक एक संधि स्थल है। ऐसा जैसे कि इधर का सब छूटा और उधर का आरंभ हुआ, तो संकल्प सहित मैं हूं तो मेरे सामने संसार है, सामान है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, समर्थक है, विरोधी है, दुख है और सुख है। ये कब है कि जब मैं अपने संकल्प के साथ हूं तब है। और फिर अब साधना की बात शुरू हो गई, अब सत्संग का प्रकाश लेकर चलना आरंभ हो गया, तो अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपना कोई संकल्प ही नहीं है, लेकिन शरीर है, समाज है और राग निवृत्ति का साधन बाकी है, तो सामूहिक हित की दृष्टि से कोई बात भीतर उठ रही है कि अगर ऐसा हो तो सबका हित हो। तो अब उस संकल्प को लेकर के चलेंगे, जो सामर्थ्य होगी, जो समय होगा, सो लगा देंगे, पूरी शक्ति से, ईमानदारी से कर देंगे। अब उसका फल जो बनना हो बने, लेकिन कर्ता जो है वो करने के राग से फ्री होकर के निःसंकल्पता की शांति में निवास करेगा। इसलिए मानव सेवा संघ में महाराज जी ने प्रारंभिक साधकों के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को समान महत्व दिया। ऐसा होते होते जब व्यक्ति राग रहित हो जाएगा तो शरीर रहेगा और संकल्प नहीं रहेगा। शरीर से प्रवृत्ति होगी और शरीरधारी उसमें प्रवृत्ति के प्रभाव से आक्रांत नहीं होगा, ऐसे चलता है। और फिर और आगे बढ़ जाती है गाड़ी, और शांति हो जाती है, तब क्या होता है कि तब सही काम करने के बाद मुख सत्संग में आते ही, निवृत्ति में आते ही शरीर और संसार का संबंध टूट जाता है, तादात्म्य छूट जाता है, तो अविनाशी जीवन के बोध का आनंद रह जाता है। तो अलग अलग साधकों से मैंने अलग अलग ढंग के अनुभव सुने। किसी किसी ने तो बताया कि बहुत बहुत दिनों तक उस देहातीत जीवन के आनंद की मस्ती में रह गए। आनंदमयी माता जी के मुख से मैंने सुना था, भक्तों की कही हुई बात नहीं है, अपने मुख से वो कह रही थी। साधु लोग बैठे थे और मैं बाहर बैठ करके सुन रही थी। स्वामी जी महाराज से आज्ञा लेकर के दो चार लड़कियां उन दिनों में जो हमारे साथ थी, इन लोगों में से कोई नहीं थी, दूसरी दूसरी लड़कियां उन दिनों में थी गीता भवन में। तो मैंने कहा कि स्वामी जी महाराज हम माँ के दर्शन करने जाएं इन सब लड़कियों को लेके, तो उन्होंने कहा कि जाओ। जलोटे परिवार की दो लड़कियां थी और शांता जी की दो लड़कियां थी और भी कोई कोई आई हुई थी बाहर से, उन्हीं को लेके गई। तो माँ जहाँ बैठी थी बहुत साधु लोग बैठे थे, तो हम लोग भीतर नहीं घुसे, परमिशन लेने की भी हिम्मत नहीं, तो चौकट के बाहर ऐसे हम लोग बैठ गए। हमने कहा यहाँ बैठो, यहाँ से दर्शन भी हो रहा है, बात भी सुन रहे हैं। तो माता जी खुद ही अपने मुख से ही साधु लोगों से बातचीत कर रही थी और सुना रही थी। तो देहातीत जीवन का आनंद सुना रही थी, तो कह रही थी कि 9 वर्षों तक अपने को पता ही नहीं चला कि कहाँ शरीर है, कहाँ संसार है। अब देहातीत जीवन के आनंद में संकल्प विकल्प निर्विकल्प सबके पार पहुंच गई। बताएं कि भूख का भी पता न चले, नींद का भी पता न चले। तो किसी ने कहा कि तो कैसे हुआ फिर, तो बता रही थी एकदम इतने सहज भाव से, बिल्कुल सरल बालक की तरह वर्णन कर रही थी। कह रही थी कि किसी को खाते हुए जब मैं देखती, ये शरीर देखता ऐसा करके संबोधित करती, मैं करके नहीं, किसी को भोजन करते हुए देख के तो ऐसा लगता है कि सुंदर लागते, बंगला भाषा में बोलते कि कितना सुंदर लग रहा है, ये क्रिया बोलते कि सुंदर लागते, की भालो लागते, ऐसा होता। और कभी कभी कहते हैं कि ये शरीर ऐसे ही उठ करके चला जाता भोजन के पास, तो कुत्ता खा रहा हो, पत्तल में चाट रहा हो, कि कोई बच्चा खा रहा हो, कि कोई व्यक्ति खा रहा हो, तो देख के ऐसा लगता है कि कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। और अपने पति का नाम लेकर के शरीरधारी पुरुष से विवाह भी हुआ था, तो आनंदमयी माता जी उनको भोलानाथ कहती थी। तो वो बंगला भाषा में ही साधु लोगों को सुना रही थी कि दौड़ दौड़ करके मैं कभी इधर कभी उधर जाती तो भोलानाथ आना के दरे दरे राख ऐसे बोलती कि भोलानाथ हमको पकड़ पकड़ के संभाल के रखते थे, भोलानाथ आना है दरे दरे राख तो बोल रही थी, रक्षा में रहते थे। तो अभी इनको 9 वर्ष की अवधि उस देहातीत जीवन के आनंद में बीत गया, जबकि कहाँ शरीर है, कहाँ संसार है, कहाँ भूख प्यास है, कहाँ भोजन जल है, कुछ उनको पता नहीं चला। और 9 वर्ष के बाद भी धीरे धीरे बीच बीच में स्वस्थिति उनकी शरीर के साथ जुट करके बातचीत करने के लायक हुई भी, तो कभी भी वो निरंतर शरीर के साथ रहती नहीं थी, बात करते करते भी पार, सभा में बैठे बैठे भी पार, अपने ही आप अपने आनंद में डूबी ही रहती थी। और भगवत कृपा रही होगी, ईश्वर का विधान रहा होगा कि हम लोगों के बीच में इस प्रकार के संत रहें और अपनी कृपा से अपने जीवन के सत्य से लोगों को लाभान्वित करें, इसलिए उनका समय समय पर शरीर से तादात्म्य रख करके काम कर लेना, बात कर लेना, ये सब चलता था। लेकिन उस अनुभव के बाद से आखिर समय तक आनंदमयी माता जी ने अपने से भोजन उठा के ग्रास मुख में नहीं डाला। उन 9 वर्षों के बीच में जिन जिन माताओं ने, महिलाओं ने उनके शरीर को संभाला, आखिर समय तक वो ही क्रिया चलती रही। कोई नाला देता, कोई कपड़े पहना देती, कोई बाल बना देती, कोई मुख में खिला देती, कोई जल पिला देती, ऐसे ये अंत समय तक चला है। अपने से ग्रास उठा के मुख में उन्होंने डाला ही नहीं। तो भीतर की और अनुभूतियां कैसी थी वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इस बात की सत्यता में पूरा विश्वास करती हूँ कि साधक यदि स्वस्वरूप में स्थित होना चाहे तो, अथवा परम प्रेमास्पद प्रभु के हर प्रकार से आश्रित होकर उनके प्रेम स्वरूप से अभिन्न होना चाहे तो, उसके लिए अनिवार्य फैक्टर है कि वह निःसंकल्पता को धारण करे। और शरीर के रहते रहते, समाज का काम करते करते इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और उस निज स्वरूप पर दृष्टि जिसकी लग जाएगी वो लक्ष्य के रूप में आ जाएगा, अथवा वह परम प्रेमास्पद प्रभु जिसको पसंद आ जाएगा उसका अपना व्यक्तिगत संकल्प पहले खत्म हो जाएगा, फिर सेवा का संकल्प रह जाएगा, तो करते करते उसकी शुद्धि हो जाएगी, तो फिर वो भी संकल्प खत्म हो जाएगा। मैंने तो ऐसा ही समझा। मैं क्या बताऊं, जो संत कृपा से, भगवत कृपा से, जीवन के मंगलमय विधान से बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें मेरी दृष्टि में आ गई, मेरी साधना के बल पर नहीं, मेरे त्याग और तप के बल पर नहीं, ये सब तो कुछ, ये सब पूंजी अपने पास कुछ भी नहीं थी और ना मैं अर्जन कर सकी, लेकिन संत कृपा और भगवत कृपा और उस समय की पृष्ठभूमि मेरी जैसी थी, हर बात को तर्क पर लगाना, हर बात को वैज्ञानिक ढंग से समझना, तो एक भाषा बना लिया मैंने अपने लिए, तो 3 वाक्यों का प्रयोग करती हूँ मैं। पहली बात है संत कृपा, क्योंकि पहली बार मुझे स्वामी जी महाराज की कृपा का ही दर्शन हुआ, तो पहली बात है संत कृपा, और दूसरी बात है भगवत कृपा, और तीसरी बात है जीवन का मंगलमय विधान। ये जीवन का बड़ा ही मंगलकारी विधान है जो सबके साथ काम करता है, तो उसके आधार पर मैंने ऐसा अनुभव किया कि शरीर से संबंध रखते हुए और जगत से संबंध रखते हुए, अशुभ संकल्पों का त्याग करते हुए, संभव है ना जी? संभव है। शरीर और संसार से संबंध रखते हुए अशुभ संकल्पों का त्याग संभव है कि नहीं है? है भाई, ऐसी बुराई नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, इससे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी के बुरा नहीं सोचेंगे, अशुभ संकल्पों का त्याग तो है। तो अशुभ संकल्पों का त्याग करते हुए और सर्वहितकारी भाव से, सेवा भाव से शुभ संकल्पों को पूरा करते हुए, जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है तो मान लो कि उसका प्रयास पूरा नहीं हुआ, देह का अभिमान पूरा का पूरा गल गया हो, ऐसा शुरू में तो नहीं होता है और सबके साथ नहीं होता है, तो अपने लोगों की दशा सामने रख करके देखिए, तो हम लोग इसी कोटि के साधक हैं कि देह का आभास अपने को है और शरीर और संसार से संबंध रखते हुए साधना के बल पर हम लोग अलौकिक परमात्मा से मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो ये अपनी दशा है हम लोगों की। अब ऐसी दशा में जो आरंभ कर रहा है यात्रा, वो कैसे करेगा, क्या करेगा, तो ऐसा सोचने से व्रत सुनाई देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्वसमर्थ प्रभु अपने हैं, ये सत्य है, इनको स्वीकार करो। तो हम लोगों ने इन सत्य के इन वाक्यों में संदेह तो नहीं किया जी? संदेह नहीं किया। संत की वाणी में पूरा पक्का विश्वास है कि महाराज जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और संदेह न करने पर भी पूरा पूरा इसको मान लिया, ऐसा भी कहते नहीं बनता है जी? नहीं बनता है। कुछ कुछ तो कमी है, कच्चापन है, नहीं तो बोलने की कौन जरूरत पड़ती। कबीर की तरह हम भी मस्त होते, कहते मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। आप कहते कि सुनाओ, तो हम कहते हम नहीं सुना सकते हैं, सुनाने की स्थिति में मैं नहीं हूं, शरीर से मेरा तादात्म्य नहीं है, मैं नहीं सुना सकती। तो सुनाने की स्थिति में मैं हूं और सुनाने की परिस्थिति बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि कच्चापन है, पूरा नहीं हुआ। अब उस दशा में क्या करें? तो उस दशा में मैं ये निवेदन कर रही थी कि इसी प्रकार की कच्ची दशा में स्वामी जी महाराज के पास बैठे बैठे संकल्पों से अतीत, शरीर और संसार से अतीत कैसा जो वह जीवन होता है और किस प्रकार की वह अनुभूति होती है, सो समय समय पर अपने आप अप्रयास सहज भाव से आता रहता है, आता रहता है, मिलता रहता है, देखते रहते हैं। नहीं तो सोचिए कि अगर सिद्धि काल तक मुझे डार्क में ही रहना पड़े कि अविनाशी जीवन कैसा होता है और करुणामय प्रभु की कृपालुता कैसी होती है और उनके प्रेम की मधुरता कैसी होती है, इन सब बातों के प्रति अगर आखिर पॉइंट तक आदमी को अनजान ही रहना पड़े तो बड़ी बहादुरी की बात होगी कि वो आखिर तक कंटिन्यू करेगा। तो ऐसा नहीं होता। क्या है कि रास्ते में मैंने देखा है, साधन काल के बीच में ये बातें होती हैं। क्या होता है कि सत्य जिनके जीवन में अभिव्यक्त हो गया, ऐसे अनुभवी संत के पास बैठो तो पता नहीं कब कैसे या तो अपने भीतर अपनी असमर्थता की ग्लानी में अहम का अभिमान गल गया है, तो उनके जीवन का जो सत्य है वो अपने को प्रभावित कर देता है और उतनी देर के लिए हम उससे वास्तविक जीवन का आनंद ले लेते हैं। होता है ऐसा। अनेकों साधकों के मुख से मैंने सुना है और स्वयं भी अनेक बार ऐसा पाया है। तो उस आधार पर मैं निवेदन कर रही थी कि एक बार भी जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, उसका आनंद कैसा है, इसकी झलक अगर अपने को मिल गई तो वही एक संबल होता है कि बीच के रास्ते में विविध प्रकार के समाज के बीच में रहते हुए और अनेक स्वभाव के लोग, अनेक स्तर के लोग, अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन पैदा करने वाले लोग, उन सारे उलझनों में रहते हुए भी साधक अपनी साधना से डगमगाता नहीं है। बड़ी जोरदार जबरदस्त चीज है। और यही बात अपने लिए अपने सहारे के रूप में मिल गई मुझे। प्रारंभिक दिनों में ही साधन का आरंभ ही हुआ, सत्संग का आरंभ ही हुआ,
दो चार साल बीते तो कुछ मिल गया, दो चार साल बीते तो और कुछ मिल गया, दो चार साल बीते तो और कुछ मिल गया। तो पुराने संस्कार खत्म नहीं हुए, इसलिए रह रह करके फिर संसार और शरीर से संबंध जोड़ जोड़ करके साधन रूपी प्रवृत्तियों में शामिल होना अभी भी चल रहा है। ये अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन कितनी कठिनाई आ जाए और कितने उलझनों के समूह में पड़ करके मैं उलझ जाऊं और कितनी भी प्रतिकूलता सामने आ जाए, उस पर से दृष्टि नहीं हटती तो न डर लगता है, न घबराहट होती है, न छोड़कर भागने का कोई पॉइंट आता है, कुछ नहीं। ये सारी हलचल है, ये सब उलझन पुलझन है, और क्या जाने मेरे ही चित्त को शुद्ध करने के लिए इतनी प्रकार की प्रतिकूलताएं, इतनी जटिलताएं आ गई हैं। तो थोड़ा धीरज रखो, वो तो है ना, कोई बात नहीं। सामने कांटों का जाल बुन गया, सामने घोर विरोध दिखाई दे रहा है, फिर भी लगता है कि क्या जाने हमारी शुद्धि के लिए आया होगा, और क्या जाने कौन क्यों कैसा कर रहा है, वो तो है ना। तो असली चीज तो वही है, और ये सब क्या है? तो ये सब तो भाई बहुत नीचे स्तर की चर्चा मैं करती हूँ, तो साथ में रहने वाले साधक साधिकाओं से बात करती हूँ तो कोई कहता है बाबा बड़ा झंझट है भाई, बड़ा कठिन है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ निभना बहुत मुश्किल है। तो जब इस तरह की आवाज कान में सुनाई देती है तो मैं कहती हूँ कि अच्छा एक बात सुनो, जन्म मरण का प्रश्न तुमने हल नहीं किया तो जन्म मरण का क्रम बना हुआ है तो वो झंझट नहीं है जी, है ना। तो हम कहते हैं कि दूसरों पर दृष्टि जाती है कि दूसरे लोग ऐसा ऐसा कठिन बना देते हैं, जटिल बना देते हैं, बड़ा कठिन है लोगों के बीच में निभना, तो लोगों के बीच में निभना बड़ा कठिन है, तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना कठिन नहीं है जी। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना इस क्रम को मिटाने में स्वाधीन हो कि अपने डिजाइन की सृष्टि बनाने में स्वाधीन हो, बताओ। तो जब लोग बहुत घबराते हैं, साध्वी जी को भी मैंने बहुत बार सुनाया है कि रानी देखो तुम्हारे डिजाइन की सृष्टि बनेगी, नहीं तुम चाव चाव मामा करती रहो, शोरगुल मचाती रहो, अपने को बिगाड़ती रहो, हवा को क्षुब्ध करती रहो, तुम्हारे डिजाइन की सृष्टि बनेगी नहीं बनेगी ना और नहीं बननी चाहिए, और जैसी बनी है वैसी क्यों बनी है इसका भी बड़ा भारी विज्ञान है, बड़ा भारी विधान है, और मुझको तो कहाँ कहाँ तक अभी सूझ रहा है, लेकिन सारी बातें एक एक बैठक में पूरी नहीं होंगी, इसलिए उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, डटी रहूंगी अपनी जगह पर। वो क्या है कि देखो भाई, बड़ी विचित्र बात है, आज सवेरे शांति काल में मुझे बड़ा बढ़िया सा सब दिख रहा था। क्या दिख रहा था कि कहाँ कहाँ मैंने पढ़ा है, बहुत सुंदर सुंदर सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। तो पहले मैं पढ़ती थी तो सोचती थी कि पता नहीं वो कैसा होता होगा, क्या होता होगा, लेकिन भाई साधकों और संतों के जीवन में निकट से अनुभव पाने में मुझको साफ दिखाई देता है कि इस छोटी सी आकृति के साथ अपने को जोड़ करके और इसका मोह ले करके और एक सीमित व्यक्तित्व का अभिमान ले करके क्या कूड़ा कचरा अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया है, और उसी में उलझे हैं, उसी में मरे जा रहे हैं, पचे जा रहे हैं, कभी अभिमान से बीमार हो गए, कभी दीनता से बीमार हो गए, कभी हार में पागल हो गए, कभी जीत में पागल हो गए, क्या दुर्दशा हो रही है। तो ये तो क्या है, तो ये तो सारा भ्रम का जाल है, ये 100% इल्यूजन ही इल्यूजन है, और कहीं तो इल्यूजन भी नहीं है, कोरा हेलुसिनेशन है। इल्यूजन कहते हैं कि वस्तु जैसी हो वैसी न दिखे, उससे कुछ भिन्न दिखाई दे तो वो इल्यूजन कहलाता है, और वस्तु हो ही नहीं और अपने को दिखे तो हेलुसिनेशन कहलाता है। तो ये इंद्रिय दृष्टि और बुद्धि की दृष्टि में जितना जो कुछ देखने सुनने समझने में आ रहा है वो 100% इल्यूजन हेलुसिनेशन है।
और जीवन का जो सत्य है जिसमें कि दुख नहीं है, अभाव नहीं है, शरीर और संसार का स्पर्श नहीं है, निरस्ता का नाम नहीं है, मृत्यु का नाम नहीं है, वह दिव्य लोक तो न जाने कितना विस्तृत है, कितना विस्तृत है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो हम लोग तो एक छोटे से गुलर के फल में पैदा होने वाले, जीने वाले, मरने वाले कीड़े के समान एक ब्रह्मांड के भीतर खुद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बड़ी भारी बात है, ये सब कुछ नहीं है भाई। शरीर और संसार का संबंध मिटा नहीं कि बिल्कुल सिनेमा के चित्रपट बदलने की तरह आपके आंखों के आगे देखते देखते अभी एक नगर का दृश्य देख रहे थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, देखते देखते उसी कंटिन्यूएशन में एक पर्दे पर एक दूसरा, उसी प्रोजेक्शन पर एक दूसरा सीन आ गया तो दिखाई दे रहा है हरा भरा जंगल है, नदी बह रही है, एक में खेल रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो देखते देखते जैसे वो पट बदल जाता है, ऐसे ही देखते इस शरीर और संसार के संबंध का जो दृश्य है वो यूं गायब हो जाता है जैसे कि कभी था ही नहीं। ये मैं सिद्ध जीवन की बात नहीं कर रही हूं, ये मैं साधन काल की बात कह रही हूँ, और ये मैं साधक के जप तप का परिणाम नहीं कह रही हूँ, ये अनुभवी संत के पास बैठने का प्रभाव कह रही हूँ। तो पहले इन सब बातों पर तो विश्वास जमाने को कौन कहे, कहाँ थी मैं जीवन की इस मिट्टी में, धूल में, कीचड़ में सना हुआ, फंसा हुआ, और संत की कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से, उनके हृदय की करुणा से, क्या जाने कितने जन्मों तक साधन करने के बाद ये सब चीजें मिलती जो कि उनके पास बैठने में प्रारंभिक काल में ये सब हो गया, बड़ा जोरदार संबल हो गया। होता है ऐसा, संभव है ऐसा, और सोचने से किसी किसी में इतना आनंद आता है। मैं कहती हूं कि सत्य क्या है, वह जीवन क्या है, जीवन की सच्चाई जो कि कभी मिटेगी नहीं, सदैव रहेगी, वो क्या है, और इन आंखों से तादात्म्य जोड़ करके मैं देख क्या रही हूं, कहां फंसे हैं, क्या दुर्दशा हो गई है, छोटी छोटी सी बात के लिए सत्य से विचलित हो जाना, धर्म से विचलित हो जाना, साधन की ओर से खिसक जाना, स्ट्रेंथ से नीचे उतर जाना, क्या हो जाता। और बड़े बड़े बुद्धिमान बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि हाँ बहन जी, बात तो ठीक है, लेकिन भाई आपको तो पता नहीं है, हम तो दुनिया के बाजार में रहते हैं, वहां जाके देखो तो क्या हाल है। अरे क्या हाल है बाबा, क्या हाल है, तो दुनिया के बाजार को बनाए रखना कोई जीवन का लक्ष्य है क्या जी? व्यवहार में प्रवेश करो तो आपको पता चले कि क्या हाल है। पुराने शरीर के संबंध से नाते रिश्ते लोग हैं, अगर उनके सामने कोई ज्ञान की बात कह दो, अपनी ओर से मैं कभी किसी को नहीं कहती हूँ, लेकिन जब आकर के वो लोग हमी को अपना दुखड़ा सुनाने लगती हैं, बुआ की लड़कियां हैं, फुफेरी बहने हैं 5-6 और भौजाइयां हैं, और बहुत शरीर के संबंध से रिश्तेदार तो होते ही, और ऐसे भी परिवार बहुत लंबा चौड़ा था, तो कोई कुछ आके कहे, कोई कुछ आके कहे, और जब मैं सहज से कहती हूँ कि भाई ऐसा करो, तो कहेंगे हाँ तुम कहा नहीं कहोगी, तुमको क्या पता है, तुमने दुनिया बसा के देखा है क्या? तो दुनिया बसा के देखना जिन लोगों ने किया है, अरे मैंने इस जन्म में नहीं बसाया, कितने जन्मों में बसा के कितना दुख पाया होगा कुछ ठिकाना है, लेकिन आप भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं,
जिन्होंने घर गृहस्थी बसा के देखा है, मैं पूछती हूँ कि जीवन का सार मिला क्या उसमें? तो फिर उसी के लिए अपने को अटकाना और ये कहना कि भाई दुनिया के बाजार में चलो तो पता चले, पता क्या चलता है? संत कबीर को सूझा तो सबको ललकारने लगे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ, चलो आओ। उजाड़ के देखो तो पता चले कि क्या बस्ती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है, किसी को नहीं डरना चाहिए, किसी को नहीं घबराना चाहिए। केवल हमारी बहादुरी से कुछ नहीं होता है। कितने जन्म हो गए रोग में, शोक में, वियोग में तड़पते हुए, कोई एक बार का रोना थोड़ी है। कितनी बार रो चुके हैं प्रियजनों के वियोग में, कोई पहली बार का काम ये थोड़े हो रहा है, बहुत बार हो चुका है। कितनी बार क्रोधित हुए, कितनी बार क्षोभित हुए, कितनी बार वियोग में तड़पे, कितनी बार मर चुके, कितनी बार पैदा हो चुके, अब यही क्रम लगा रहेगा, इसी को चलाते रहोगे और इसी को निभाने के लिए उस वास्तविक जीवन के प्रकाश को, आनंद को, अनुभूति को छोड़ दोगे? कौन बुद्धिमानी है? कोई बुद्धिमानी। और कभी किसी साधक को हार नहीं मानना चाहिए। एक क्षण पहले तक अगर 10 भूलें मैंने की और इस वर्तमान क्षण में प्रभु की याद आ गई, वास्तविक जीवन की याद आ गई, उस दिव्य लोक के साम्राज्य की याद आ गई, काम हो गया। कोई हमको ढो नहीं थोड़ी पड़ेगा। अरे बिना माए बाप के हैं हम लोग, अनाथ हैं, कोई मालिक है कि नहीं है अपना? अनाथ नहीं है जो है वो बड़ा सामर्थ्यवान है, जो है वो परम पवित्र है। उसके स्मरण मात्र से सब भूलें मिट सकती है, उसकी कृपा दृष्टि से पाप का पहाड़ गल सकता है, क्यों डरेंगे?